This is a Suno India production, and you're listening to the Suno India Show.
द सुनो इंडिया शो के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम खेती किसानी से जुड़े तीन नए कानूनों और देश में चल रहे किसान आंदोलन को समझने की एक कोशिश है। आज आपके साथ हूं मैं सत्यम। पिछले हफ्ते हम सिंघू बॉर्डर पर थे। सिंघू बॉर्डर हरियाणा दिल्ली हाईवे पर एक सरहदी गाँव के नाम पर है। सिंघू बॉर्डर 26 नवम्बर से ही इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। यहाँ पंजाब और हरियाणा से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को हरियाणा सरकार और पुलिस ने इस हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर, बैरिकेड लगाकर और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए जबरन रोक रखा है। सिंघू बॉर्डर से पीछे की तरफ करीब 20 से 25 किलोमीटर तक ऐसा ही आलम है। हमने यहाँ देखा कि किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को घर जैसा बनाए हुए हैं। इस घर में उनके रहने का इंतजाम तो है ही, साथ में लगभग 6 महीने के लिए गेहूं, चावल, दालें, तेल और कई जरूरी सामान जमा है। सिंघू बॉर्डर को देखकर लगता है जैसे यहाँ नए गांव बस गए हैं। कभी तेज रफ्तार इस हाईवे का ऐसे इस्तेमाल देखना हमें चौंकाता है। जब हमने यहाँ बैठे किसानों से बात की तो पाया कि इस आंदोलन में शामिल किसानों के इरादे बुलंद हैं, दिमाग एकदम साफ हैं और अपने भविष्य को लेकर उनकी नज़र दुरुस्त है। उन्हें इन कानूनों से अपनी आजीविका, अपना स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में दिखलाई दे रहा है। इसलिए भी किसान आंदोलन का एक नारा बहुत स्पष्ट है कि सवाल फसलों का ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का भी है। मौजूदा केंद्र सरकार अपनी दूसरी पारी में पहली दफा किसानों के आंदोलन के सामने नरम पड़ती दिख रही है। यह पहली दफा है जब यह बहुमत की सरकार किसानों के साथ निगोशिएशन के लिए मजबूर हुई है। 5-6 दौर की बैठकों से यह लगता है कि इस आंदोलन की अनदेखी करने की स्थिति में सरकार अब नहीं है। सितंबर 2020 में संसद से पारित हुए इन कानूनों को लेकर आंदोलित किसानों की केवल एक मांग है कि इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। सरकार बार बार इनमें सुधार की पेशकश कर रही है। 8 दिसंबर को हुए भारत बंद में किसानों के अलावा समाज के हर तबके ने अपना समर्थन दिया। इस चर्चा में हमने किसान आंदोलन के नजरिए को समझने के साथ साथ इन तीनों कानूनों पर भी अलग अलग लोगों से बात की। इस दौरान हम पत्रकार और कार्यकर्ता मनदीप पुनिया से मिले, जो 5 जून से ही पंजाब में शुरू हुए इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, जब से केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून किसानों पर थोप दिए थे। हमने उनसे इस आंदोलन की खासियतों को और उसकी राजनीति को समझने के लिए बात की।
देखिए, जो आंदोलन की राजनीति होती है, आंदोलन को चलाने की जो राजनीति होती है, अब की बार जो राजनीति इस आंदोलन को लीड कर रही है वो बेसिकली है कि हाकम यानी के जो सियासतदान है या नेता है उनकी छाती पे जाकर बैठ जाना और उनको बरोबर उनको तंग करने वाली राजनीति। तो इस तरीके की राजनीति से आंदोलन चल रहा है और उसी हिसाब से तैयारियां भी है आंदोलन की। आप देखेंगे कि दिल्ली को पहले निशाना बनाया गया है। दिल्ली का मतलब दिल्ली के लोग नहीं बल्कि दिल्ली में बैठी जो सियासत है उसको। पंजाब में आप लोग गीत भी उसी तरीके से बनाए गए कि दिल्ली को हम देखेंगे और दिल्ली को हम मतलब जाकर घेर लेंगे। तो वही उसी रणनीति पे काम हुआ और उसी हिसाब से ट्रॉलियों में राशन भी लेकर चले, उसी हिसाब से अपना जो ठंड का जाब्ता है वो भी करके चले और गद्दे, तिरपाल, रजाइया सब कुछ लेकर चले। तो ये एक 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 हिसाब से इसको लोक युद्ध कह दें तो ये कोई ज्यादा अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी।
हालांकि सरकार के मंत्री और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री इन कानूनों का बचाव कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था,
मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था, उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है, वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा, इस बात को हमेगा।
इस सवाल का जवाब और किसानों का मत समझने के लिए हमने अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव कॉमरेड बीजू कृष्णन से भी बात की। उन्होंने मोदी के दावे को झुठलाते हुए हमें बताया कि किसान पहले से ही सरकारी मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचते आ रहे हैं।
ये जो तीन कानूनों को ले आए नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार, ये कहते हुए ले आए कि जब देश आजाद हुआ किसान आजाद नहीं हुए, और 2020 जून 5 तारीख को नरेंद्र मोदी भारत के किसानों को आजादी दी है कि देश में जहां चाहे उनका जो फसल बेचने का आजादी दिया है। सबसे पहले ये एक झूठ है, क्योंकि अभी भी जो कृषि उपज मंडियां है उसके बाहर ही ज्यादातर जो फसलें बेचना उसका बेचने का किसान बेच रहे हैं। सरल भाषा में अगर कहना है, पहला कानून है मंडी तोड़ो कॉरपोरेट लूट बढ़ाओ कानून, पहला वाला जो पूरा अभी कृषि उपज मंडियां है उसको खत्म करने का एक साजिश है। समर्थन मूल्य का जो है उसमें सरकार पीछे हटने का एक साजिश है, और ये कह रहे हैं कि जो कॉरपोरेट मुनाफा के लिए जो लगातार काम करते हैं वो हमारे किसानों का रक्षक होंगे और वो सही दाम हमारे किसानों को देंगे। ये पहला एक कानून है। दूसरा है अवश्य वस्तु कानून में जो संशोधन लिया है, ये सरल भाषा में अगर कहे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ाने के लिए एक कानून है, और इसमें ये है कि जो अवश्य वस्तु है चाहे धान गेहूं दलहन तिलहन कुछ सब्जियां, ये सभी अभी इस कानून के तहत अवश्य वस्तु नहीं होंगे, और ये जो बड़े कॉरपोरेट कंपनियां है अदानी अंबानी वॉलमार्ट, ये जितना चाहे ये जो फसल स्टोर कर उसको स्टोर किया जा सकता है। तीसरा जो कानून है वो खुलेआम कॉरपोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देने का एक काम है। हम देखे हैं भारत का एक इतिहास रहा है, जो अंग्रेज साम्राज्यवादी शासन काल था उस समय किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी राज एक था। इसी देश में हम देखे हैं कि नील का जो खेती जबरन किया गया और उसके खिलाफ किस तरीके से चंपारण में हो और अलग अलग जगह में जो किसानों का आंदोलन हुआ है, उस समय जो अंग्रेज साम्राज्यवादी शासक किए जो काम कर रहे थे, आज वही कॉरपोरेट अदानी अंबानी के जो कठपुतली है मोदी और शाह, उन्हीं नीतियों को अभी लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। तो किसान, हमारे देश के किसान, बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश के किसान को मिसलीड किया जा रहा है और वो समझते नहीं है ये सब, और कुछ लोग उसको मिसलीड किया जा रहा है।
पटियाला से आए और सिंघू बॉर्डर पर बैठे बुजुर्ग किसान साथी श्री सतवान सिंह जी ने हमें बताया कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं।
आपका नाम क्या है?
सतवान सिंह। असल दे विच सब तो पहली गल ये है भी पंजाब दे विच जिहड़ा मंडीकरण सिस्टम अनाजां दा दो दा वह खत्म हो जूगा, वो बड़ा फर्क पऊगा। दूसरी गल किसान की आमदन पहले ही पंजाब का जिहड़ा किसान आ वह करजे के थले दबिया होया, कंपनियां ने जदों ये उपर कब्जा कर लिया मंडी के उपर तो किसान की जमीन आ गई जानी जी हथा चो निकल के कारपोरेट घराणिया के हथा दे चली जाऊगी। आम करके छोटी तो दरम्यानी किसानी हैगी जानी जी संकट के फस जूगी, जिदे उन्होंने हालत एक आम मजदूरों नालों भी माड़ी हो जाऊगी। ये करके जानी मतलब पंजाब का किसान है जानी जो संघर्ष कर रहा।
सिंघू बॉर्डर पर ही हम एक किसान साथी सतवान सिंह जी से मिले जो छोटी जोत के किसान हैं। उन्होंने पंजाबी भाषा में हमें बताया कि पंजाब के किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में जब भारत सरकार सरकारी मंडियों के साथ साथ प्राइवेट मंडियां भी शुरू करवा देगी तो कुछ दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में सरकारी मंडियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और उनकी जगह केवल प्राइवेट मंडियां ही बचेंगी। पंजाब के किसान वैसे भी सरकारी मंडियों पर निर्भर हैं, जहां वो अपनी खेती की उपज बेचते आ रहे हैं। ये बताया पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़ रही एग्रीकल्चर साइंटिस्ट प्रोफेसर राजेश्वरी रैना ने।
पहले ये किसानों ने मांगा, सरकार ने इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मतलब शुरुआत की कि सर कि किसान एक जैसे मतलब एक दो तरह की क्रॉप्स ग्रो करें, कल्टीवेट करें या एक उत्पादन करें
जी।
और किसान खास करके पंजाब के किसान को ये इससे कुछ 60,000 करोड़ मिलता है, जो FCI से मतलब जो
में जी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
से दोनों जाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो हैं उसका तो जो स्टेट के को मिलता है वो इतना पैसे मिलते हैं हर साल।
कॉमरेड बीजू कृष्णन ने हमें ये भी बताया कि सरकारी खरीद की तुलना में कंपनियां पहले से ही MSP नहीं दे रही थी। ऐसे में अगर ये नए कानून लागू हुए तो परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी।
हम जानते हैं इससे पहले भी कुछ जैसे दलहन अरहर दाल उसका भले न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा होता है, ये सिर्फ कागजी बस है, वो किसानों को नहीं मिलता। कर्नाटक का उत्तर भारत उत्तरी भाग में जो गुलबर्गा है वहां अरहर दाल का खेती होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जब ये 3-4 साल पहले का बात कह रहा हूँ, तो उस समय 55 रुपया प्रति किलो था, किसानों को 30-35 ज्यादा से ज्यादा 40 रुपया ही मिल रहा था, क्योंकि सरकारी खरीद नहीं है नहीं। और ये जो बड़े व्यापारी उनसे खरीदते थे
जी।
तो वही जो हम मानते चलो 40 रुपया मिल रहा है किसानों को, उपभोक्ताओं के लिए 220 तक उस समय मार्केट में अरहर दाल बिकती था
जी।
ये इसमें अदानी अंबानी बिरला टाटा सब लोग इसमें है दाल बेचते हैं, आप जानते हैं अलग अलग नाम से जो मार्केट में है, प्रति किलो में 180 का जो मुनाफा है और लाखों टन देश में दाल का इस्तेमाल होता है, हर गरीब घरों में हर जगह इस्तेमाल होने वाला एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में हर जो आवश्यक वस्तु है उसका दाम में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगा, ये कंपनियां निर्णय करेंगे।
एक तरफ जहां आंदोलन अपनी गति पकड़ रहा है और मुख्य रूप से पंजाब से निकला यह आंदोलन अपने साथ देश भर के किसानों को जोड़ते नजर आ रहा है, वहीं केंद्र सरकार भी हर कोशिश करते हुए दिख रही है किसानों को मनाने की। इस बीच इन कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलन सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। किसान आंदोलन में शामिल किसानों ने भी हमें यह बताया कि ये कानून अगर लागू हुए तो इनका नुकसान केवल किसानों को ही नहीं बल्कि आम शहरी ग्रामीण व गरीब लोगों को भी होगा। पंजाब के किसान सतवान सिंह जी ने हमें बताया।
मैं पंजाबी में इसका जवाब देता हूँ। जो तीनों कानूनों में तीसरा कानून है जिसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सोध वाला कानून है, जो भंडारण के संबंध में है, इससे पहले भंडारण जो जरूरी वस्तुआं थी भावें अनाज थी या दूसरी जिन्हें भी जरूरी वस्तुआं हैं उनके भंडारण पर पाबंदी थी, और हम जे कोई पाबंदी होने के कारण के फिर भी भंडारण करता था, हम रेड पवा कर उसको छापा मरवा के उसका जो भंडारण नो रद्द करवा देते थे। तो जब एक जो अमेंडमेंट है इसके साथ उनको जो बड़ा व्यापारी है जो बड़े होल्डिंग है जो करते हैं उन पर जो अंकुश था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और उनकी इतनी कैपेसिटी है वो सारी की सारी जो फसल है जैसे आलू है सब्जियों में प्याज है उसकी तो मिसाल है ही। हुण जब तक जे कानून था जमाखोरी रोकने वाला जां भंडारण रोकने वाला तब भी वह प्याज की भंडारण करके जो सीजन मौके 10 रुपये किलो के प्याज होता है उसको भंडारण करके उसकी नकली शॉर्टेज पैदा करके उसको 80 रुपये तक बाजार में बिकता है। जब ये ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਉਨ ਪਰ ਜੋ ਅੰਕਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਥਾ ਵੋ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਉਨਕਾ ਵੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਲੇਕਰ ਉਸਕੋ ਖਰੀਦ ਕਰ ਉਸਕੋ ਜਮਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜੈਸੇ ਪਿਆਜ਼ 80 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਰ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਚੀਨੀ ਹੈ ਖੰਡ ਹੈ ਉਨਕਾ ਵੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਮੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਸਭ ਬਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ ਸਭ ਪਰ ਇਸ ਇਨਕਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਵਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇ ਬਦਲਾਵੋਂ ਸੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਔਰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਢੇਗੀ ਜਿਸਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਦਾਮ ਵੀ ਬਢੇਂਗੇ। ਆਮ ਕੰਜ਼ੂਮਰਸ ਕੋ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨੋਂ ਮੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਇਨਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਨਾ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕਈ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬੁਰੀ ਅਸਰ ਡਾਲੇਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵ ਆੰਦੋਲਨ ਕੀ ਕਾਰਯਕਰਤਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇ ਹਮੇ ਬਤਾਇਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਹੈ।
तो हम लोग अगर तीनों लॉज को मिला के उसका एक इम्पैक्ट देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो लोगों की चीज़ें खरीदने की क्षमता है जिसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं वो कम हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर कम होने से जो सबसे ज़्यादा निचला वर्ग है यानी कि जो लेबर है या फिर जो छोटी किसानी है या भूमिहर जो लोग हैं तो उनके लिए अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। पहली बात तो परचेजिंग पावर कम हो रही है और दूसरा जैसे कि स्पेशल कमोडिटीज़ एक्ट जो कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो होर्डिंग है वो ऑलमोस्ट लीगल हो जाएगी अगर ये ऑर्डिनेंस लागू होता है। तो अगर होर्डिंग लीगल होती है तो इसका मतलब जिस तरीके से आजकल प्याज का जो भाव है वो सीजनली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उसी तरीके से कुछ एसेंशियल सीरियल्स हैं जो अपना ये दालें हैं पल्सेस हैं उनके भी भाव इस तरीके से बढ़ने लग जाएंगे जो कि हमारे हर रोज़ की स्टेपल डाइट है। तो बहुत ही ज़्यादा एक भुखमरी वाला जो माहौल है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो पहले समय के अंदर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था हरी क्रांति नहीं हुई थी तब भी जो हमारे देश के अंदर एक कंडीशन थी कि असली के अंदर उपज इतनी कम थी कि लोगों में भुखमरी छाई हुई थी। अब उपज की तो कोई दिक्कत नहीं है उपज है लेकिन फिर भी हम लोग को भुखमरी का जो माहौल है वो दोबारा से लाना चाहते हैं ताकि जो कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं उनका फ़ायदा हो सके। और इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पीड़ित महिला हो जाएगी क्योंकि जैसे ही एक पूरे परिवार की चीज़ें खरीदने की क्षमता कम होती है उसी तरीके से घर के अंदर लड़का लड़की के अंदर कितना कितना पैसा जो है वो लगता है दो बच्चों पर वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक फैमिली के पास एक ही बच्चे को पढ़ाने के पैसे हैं और एक लड़का है एक लड़की है तो वो किसको पढ़ाने की जो कोशिश है वो करेंगे वो किसको किसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे आने वाले समय के अंदर। तो इस तरह से जो औरतें हैं और जो स्पेशली जो वर्कर औरतें हैं वो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर इन बिलों का जो हानि है वो भोगेंगी और जो किसान औरतें हैं वो भी।
जसप्रीत इस आंदोलन के लिए पोस्टर्स बना रही हैं महिला किसानों की सेहत का ख्याल रख रही हैं और समर्थन देने पहुंच रहे लोगों से किसान आंदोलन के मुद्दों के बारे में भी बात कर रही हैं। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यह भी है कि केंद्र सरकार ने ना तो अध्यादेश लाने से पहले और ना इन्हें संसद में पास कराने के दौरान किसानों व किसान संगठनों को भरोसे में लिया ना ही इनसे एक बार भी बात की। इसलिए सरकार के साथ होने वाली हर बैठक में किसानों की तरफ से यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार बताए कि ये कानून बनाने से पहले सरकार ने किन किसानों व किन संगठनों से बात की। इस बारे में प्रोफेसर रैना ने बताया कि सरकार और आम लोग भी किसानों के बारे में क्या समझ रखते हैं।
हम सोचते हैं कि किसान को अपनी मतलब स्वस्थ अधिकार है जो जो अपनी खेती के बारे में खेत के बारे में पानी के बारे में मिट्टी के बारे में जानते हैं मार्केट्स भी पहचानते हैं और बेच भी सकते हैं मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है, 1960s में भी कहा गया, थियोडोर शुल्ट्ज वगैरह, बहुत थियोरीज है इसके बारे में भी ना, कि किसान कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ। मतलब ये ऐसे जो बिल्स बनाते हैं जिससे किसान की नहीं, उनके स्वास्थ्य अधिकार छीना जाता है, उनको बस गुलाम बना के दिखते हैं, वो बहुत बहुत खराब है।
किसानों की एक बड़ी चिंता यह भी है कि उन्हें इन कानूनों में न्याय मिलने की गारंटी नहीं दी गई है।
किसान को कहीं भी शिकायत करने का मौका नहीं है, जुडिशरी कोई नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। हा? तो ये मार्क, और फिर SDM में हम जानते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, हमें किसी को ये सीखने की जरूरत नहीं है, कोई सरकारी किसी मामले में फंसे हुए हैं तो हम तो किसान क्या करेंगे। तो ये चारों तरफ से गया है, मतलब किसान को नागरिक नहीं समझते हैं ये सरकार, और हम लोग हम नागरिक मतलब शहर वाले लोग भी, कंज्यूमर्स भी इतना एलिनेटेड है किसान के मुद्दों से कि हम भी किसान गुलाम समझते हैं, किसान को नागरिक हमारे जैसे मतलब इंसान नागरिक, एक देश का एक ही, हर एक किसी को भी एक ही वोट है, वो ऐसे नहीं समझते हम उनको, हम उनको कोई अलग जानवर जैसे समझते हैं, मतलब कोई गुलाम समझते हैं। ये बिल्स तीनों उनको किसान नहीं गुलाम समझने की मामला है।
दिलचस्प है कि इतनी समस्याओं के बावजूद इन कानूनों के तमाम बुरे पहलुओं को, जिन्हें किसान इतना बारीकी से समझ रहे हैं, इसी देश में एक ऐसा तबका भी है जो इस आंदोलन का मजाक बनाने और उन्हें बदनाम करने से भी नहीं चूक रहा है। आंदोलन में शामिल किसानों को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में कही जा रही हैं। यहाँ तक कि सरकार के मंत्री और पार्टी के नेता भी यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये तो किसान जैसे नहीं लगते, या इन्हें बाहर से फंडिंग मिल रही है। किसान आंदोलन को लेकर इस तरह की बातों पर हमने पुनिया से बात की।
किसान बिल्कुल मतलब जींस वगैरह नहीं पहन सकता, जूते नहीं पहन सकता, ये कहाँ बताया, ये सोच ही गड़बड़ है। असल में 90 के बाद जो NGO का जो समाजवाद चालू हुआ तो उसने इस तरीके की बेचारगियां बेचनी शुरू की थी फंड जुटाने के लिए। तो मुझे लगता है कि किसान की इस तरीके की फोटो वायरल करना जिसमें वो नंगे बदन होता है, बेचारगी का होता है, तो इसी इमेजिनेशन ने शहरी यूथ में या फिर शहरी सहरातियों में उसकी पिक्चर बिल्ड की है कि किसान तो ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, किसान ऐसा नहीं होता है। किसान की जिंदगी में भी सारे रंग होते हैं, वो अच्छे कपड़े पहनता है, ब्याह शादियां करता है, मनोरंजन करता है, चाव से रहता है, दो चार गाड़ी घोड़े भी रखता है और अपने ट्रैक्टर भी रखता है, तो सारी चीजें हैं। और ये इसी वजह से है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अच्छी खेती हुई है और उपजाऊ जमीन तो पंजाब की है, 5 नदियों का पानी लगता है तो है, और पंजाब के किसान इस चीज के उलट बहुत कुछ बोल रहे हैं। इवन पंजाब के एक लीडर हुए थे बलराम सिंह जाखड़, जब वो संसद में गए कोट पैंट पहन के, तो वहां पर VP सिंह ने तंज कस दिया कि ऐसे कौन से किसान हो गए जो कोट पैंट भी पहनने लगे। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को तो दर्द ही यही होता है जो सामंती लोग हैं, कि जब एक किसान का बेटा कोट पैंट पहनता तो आप लोगों को दर्द होता है, सामंतियों को दर्द होता है। तो ये जो सहराती हैं वो सहराती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते जब कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी SUV रखते हैं, iPhone रखते हैं, जींस वगैरह पहनते हैं और उनसे ज्यादा ट्रेंडी दिखते हैं यूथ जो है। तो शहरातियों को एकदम से होता है कि यार ये ग्राम, ये टेंडू लोग, मतलब इसको कहें ये ग्रामीण, ये देहाती, ये उनके पास ये चीज कैसे आ गई।
पुनिया ने हमें बताया कि किसानों ने यह तय किया है कि वो अपनी कमजोर छवि पेश नहीं करेंगे और बेचारगी को नहीं बेचेंगे और नंगे बदन फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे,
नंगे पैर फोटो दे देंगे और किसान नहीं, बल्कि हम अपनी शक्ति बेचेंगे कि हम देखो कितने शक्तिशाली हैं कि हमने इतने बड़े हाकम को भी दबा लिया है और उसकी छाती पे आकर बैठ गए हैं, और उसको बार बार यही कहते रहेंगे कि तेरे को हम बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं और तुम्हें, तुम्हारी जो सियासत है इसकी कमर तोड़ के ही दम लेंगे और हमारे कानून वापस करवा के जाएंगे, इस तरीके की सियासत हम आंदोलन की रखेंगे।
हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों को दिल्ली में बुराड़ी के स्टेडियम में बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन किसान आंदोलन के नेताओं ने इसे ना मंजूर कर दिया था।
तो ऑफर भी हुआ कि आप गांधीवादी तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बुराड़ी के मैदान में आके बैठ जाइए, लेकिन किसानों ने तभी समझ लिया नहीं, ये दिल्ली में हमें घेर लेने का इरादा है सरकार का, हम दिल्ली में घिरने नहीं आए हैं, हम दिल्ली को घेरने आए हैं।
पुनिया ने यह भी कहा कि किसान अपनी मांगों से टस से मस नहीं होंगे।
ये देखिए एक ऐसी सरकार जो टेबल टॉक के लिए भी मतलब किसी आंदोलन में इनवाइट नहीं करती थी लोगों को, वो आज के समय में तो टेबल टॉक कर रही है, वो किसानों को बुला रही है और कह रही है कि देख लीजिए, इतना कर लीजिए, इतना छोड़ दीजिए, संशोधन कर लीजिए। नहीं तो एक बात क्लियर है कि पिछले 6 साल में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें किसी भी आंदोलनकारियों को बुलाया ही नहीं गया इन्होंने बात करने के लिए, बल्कि दबा दिया है मारकूट के। पहली बार हो रहा है कि सरकार चोरी चोरी से मीटिंगें भी कर रही है, ओपन में भी मीटिंगें कर रही है, किसानों को बुला के कह रही है कि आप इतने में मान जाइए, इतने में मान जाइए, लेकिन आप फिर भी किसान कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं, आप कुछ भी हमें लॉलीपॉप टॉफी देते रहिए, हम तो मानेंगे नहीं जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। तो ये अपने आप में एक इस किसान की देन है कि इन्होंने ऐसे हकम को झुका लिया है जो 6 साल से मस्ताया हुआ था।
अब देखना यह है कि सरकार और किसान आंदोलन आपसी बातचीत के बाद किस नतीजे पर पहुंचते हैं। किसान भी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते बातचीत उनकी पहली मांग से शुरू हो। नमस्कार।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। यू वर लिसनिंग टू द सुनो इंडिया शो। यू कैन लिसन टू मोर एपिसोड्स ऑन आवर वेबसाइट sunoindia.in और सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट ऑन एप्पल आईट्यून्स, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई और गाना। Suno India produces a wide range of exclusive shows, ranging from current affairs to history to children's stories to climate change. But what brings all these podcasts together is the need to tell stories that are unheard or underreported. Do check out our podcast on sunoindia.in. As an independent platform, Suno India relies on you, our listeners, to bring to light stories that matter. Please consider supporting the work we do. Visit our website sunoindia.in for more information.